ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕਰਦਾ ਮੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵੱਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਜੋ ਬਖਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਚੱਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਲਗਾ ਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇਰੀ ਚੱਟ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਹੀਰਾ ਲਾਲਾਂ ਦਾ ਵਣਜਾਰਾ ਏ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਉਹ ਗਣ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾਏ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰੂ ਹੈ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਉਹ ਗਣ ਬਖਸ਼ਣ ਹਾਰਾਏ ਇੱਕ ਤੁਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੱਕ ਕੇ ਅਣਡਿਟ ਕਰਦਾ ਮੱਥੇ ਪਾਉਂਦਾ ਵੱਟ ਨਹੀਂ
ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਸੇ ਬੋਲੀਏ ਧੰਨ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਵੀ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮਾਨ ਦੇਤੇ ਜਾਂ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਵੀ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਜਗ ਮੇਂ ਪਰਵਰਿਓ ਆਪ ਨਰਾਇਣ ਹੀ ਇਹ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਔਰ ਨਿਰਾਕਾਰ ਮੇਂ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੋਈ ਮੋਈ ਮੋਈ ਤੋਈ ਅੰਦਰ ਕੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਤਾ ਜੈਸੇ ਪਾਣੀ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾਏ ਤੋ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਬਤਾਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪਾਣੀ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ ਤੋ ਜੇ ਕੌਣ ਸਾ ਹੈ ਦੁੱਧ ਮੇਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਨਰਾਇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪ ਹੀ ਸਾਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਕੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਕਾਮ ਹੋਤੇ ਹੈ ਵਹੀ ਬਤਾ ਸਕਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਕਾਮ ਕੋ ਜਾਣਤਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਤਾ ਤੋ ਜਬ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਸਕਤਾ ਹਮ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਚਲ ਛੋੜ ਦੇ ਛੋੜੋ ਆਪ ਤੋ ਜਾਣਤੇ ਨਹੀਂ ਤੋ ਹਮੇ ਬਤਾਨੇ ਆਏ ਹੈ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਵੀ ਸਾਕਾਰ ਕੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਤੋ ਹਮ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚਲਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਜੈਸੇ ਦੁੱਧ ਮੇਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਾ ਦੇ ਜਾਂ ਦੁੱਧ ਮੇਂ ਦੁੱਧ ਮਿਲਾ ਦੇ ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਤਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੇ ਦੁੱਧ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੀ ਕਾਸੇ ਮੇਂ ਪੜਾ ਥਾ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੀ ਔਰ ਕਿਸੀ ਬਰਤਨ ਮੇਂ ਪੜਾ ਥਾ ਕਈ ਕਿਸਮ ਕੇ ਬਰਤਨ ਹੋਤੇ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਬ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਬਤਾਏ ਤੋ ਤਬ ਵੀ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਤਾ ਦੇ ਬਈ ਇਸੀ ਮੇਂ ਹੀ ਗਾਏ ਕਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਡਾਲਾ ਹੈ ਭੈਂਸ ਕਾ ਵੀ ਦੁੱਧ ਡਾਲਾ ਹੈ ਜਬ ਡਲ ਜਾਤੇ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤੋ ਫਿਰ ਹਮ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਦਾਤਾਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਤੋ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਪੂਰੇ ਗੁਰਜੋ ਬਖਸ਼ੀ ਪੂੰਜੀ कर सकता कोई चट नहीं।
कहते हैं जो सतगुरु ने हमें पूंजी बख्शी है इसी को कोई भी खत्म नहीं कर सकता, चट नहीं सकता। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमें कोई मालिक चीज़ दे दे उसको फिर कोई भी नहीं हिला सकता। हमारे पास होती है, कोई भी नहीं ले सकता, कोई भी छीन नहीं सकता। तो जब हम आप किसी की उठा ले तो वो तो साथ संगत पे छीनी भी जा सकती, चोरी भी उसकी ऐसे लग जाती है कि इसे चुराई है। इसी तरह ही जब ये सतगुरु ज्ञान देता है, ये पूंजी देता है, इसको कोई भी फिर ख़त्म नहीं कर सकता। चाहे कितना भी इंसान ऐसा हो भाई इसको मैं ख़त्म कर दूंगा, पर नहीं ख़त्म कर सकता। क्योंकि ये सतगुरु की ऐसी देन होती है कि साथ संगत, ये तो कहा है कि जो जो ये बढ़ता जाता है, हम खर्चे जाते हैं, बढ़ता जाता है, ये कभी भी इसमें कमी नहीं होती। हम अगर खर्च करते हैं तो कहते हैं कोई चीज़ भी होती है, कहते हैं वस्तु होती है, हम कहते हैं ये ख़त्म हो रही है, पहले इतनी थी अभी इतनी रह गई है। पर ये तो कहते हैं प्यो दादे दा कुल डिठा खजाना, जब मेरे मन पिया नदाना, खावो खर्चो रल वे पाई टोट ना बेबत हो जाई। कहते ये ऐसा खजाना होता है कि इसमें कमी नहीं आती, ये बढ़ता ही चला जाता है। जैसे जैसे खर्च करते हैं आप देखते हैं कि पहले जब ज्ञान थोड़े इंसानों में बांटा गया तो थोड़े फिर बढ़ते गए। इसी तरह जैसे जैसे ये ज्ञान मिलता गया और संगत बढ़ती गई। तो कहते हैं कि ये तो जैसे जैसे भी हम बढ़ते हैं, इसको इस्तेमाल में लाते हैं, तो ये और बढ़ता चला जाता है। इंसान चाहे कि नहीं ये काम हो रहा है, काम नहीं होता, ये बढ़ता जाता है, ये इसमें कभी भी कमी नहीं आती। ये इंसान को कभी कभी भुलेखा लग जाता है कि ये तो आप देख ही रहे हैं कि पहले एक दो में थे, फिर चार में, छः में, फिर सैकड़ों में, हज़ारों में, लाखों में, अभी तो साथ से इससे भी बढ़ता चला गया है। तो ये तो ऐसी चीज़ है, इसको जैसे जैसे बांटते हैं ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, ये बढ़ती ही चली जाती है। तो इसीलिए कहते हैं कि खर्चो इसको, बेशक खर्चना कहते हैं, जैसे और कोई वस्तु होती है हम कहते हैं कि इसको खर्च ले, बांट सबको, तेरी वस्तु में और बरकत पड़ जाएगी। इसी तरह ये भी जैसे जैसे बांटते चले जाते हैं, तैसे तैसे ही साध संगत ज्ञान देते चले जाते हैं और सत्संग में बढ़ोतरी आती चली जाती है। ये तो हम देखते ही हैं क्योंकि काफ़ी अरसे से जिन्होंने ज्ञान लिया, जैसे सत्संग में बचपन में ही लिया, बचपन में कितनी संगत थी, जब ज्ञान लिया तो अभी सत्संग गिनती में भी नहीं आती, तो पहचान भी नहीं होती कभी कभी, कह देती हूँ कभी मैं तो भूल भी जाती हूँ बहुत, तो कहती है कि आप कहाँ से आए, कहते माता जी आप हमारे घर दो बारी गए थे, तो साथ संगत आओ, ये तो वो कहते हैं कि भूल तो लग ही जाती है क्योंकि इतनी संगत में पहचान भी, फिर कहिए कि हमें सबकी पहचान रहे, ये तो साथ संगत नहीं, क्योंकि जो बार बार रोज़ मिलते हैं या कुछ दिनों के बाद महीनों के बाद, वो तो सत्संग पहचान हो जाती है, जो सालों के बाद मिलती है उसकी भी थोड़ी बहुत ही पहचान, जो बरसों बरस ना मिले, देर बाद मिले तो फिर हम कहते हैं जी आप कहाँ से आए, मैं तो सत्संग कह रही हूँ मैं बहुत भूल जाती हूँ, बाबा जी पास होते कहते हम इनके घर पीछे तो गए थे, मैं कि बाबा जी मुझे तो नहीं पहचान रही। तो आओ साथ संगत, इसी तरह ही इस शब्द में बताया है कि जैसे जैसे ये बांटते जाते हैं ऐसे ऐसे बढ़ता जाता है।
पूरा सतगुरु पार लगा दे लांदा देरी चट नहीं।
कहते हैं कि पूरा सतगुरु इंसान को पार लगा देता है, देरी चट भी नहीं लगाता। पार कैसे, जैसे साथ संगत हम बचपन में पढ़ा करते थे, कोई आवे तो पार लंघावे, कंडे ते मैं खड़ी हैं, जैसे दरिया का कंडा होता है, एक तरफ एक, दूसरी तरफ दूसरा, उससे पार कोई लगा दे तो हम कहते हैं जी मैं अकेले तो नहीं इससे पार हो सकता था। पर महापुरुष ने या बहन ने या किसी ने भी हाथ पकड़ के मुझे पार कर दिया है। तो आओ सत्संग कहते हैं कि पूरे सतगुरु का भी यही काम है कि ये पार लगा देता है, पर तेरी एक थोड़ी थोड़ी भी छट भी जिसको हम कहते हैं कि उतनी भी नहीं लगती। हम चाहे कितना ही जोर लगाते रहे, अपने आप तो साथ संगत किसी की भी पहचान भी नहीं होती। अगर हम कहें पहले ना देखा हो तो कोई पहली बार देखा हो तो कोई पूछे कि इनको पहचानते हो, हम कहते हैं नहीं जी मैंने पहली बार ही देखा है। तो इसी तरह पर कहते हैं सतगुरु जो है ये पार लगा देता है पर देरी भी नहीं लगाता, क्योंकि जैसे किश्ती में बैठे हों तो साथ संगत एकदम एक किनारे से दूसरे किनारे में पहुंच जाते हैं। कोई दरिया होता है, बहता पानी होता है, पर अगर कहें कि अपने आप हो गए, अपने आप तो साथ संगत तैरने में चाहे सांस भी फूल सकता है, तो हम साथ संग शायद इस किनारे से उस किनारे तक ना पहुंच सकें। तो आओ जब ये साथ संगत को हमारा बाजू पकड़ लेता है, कहता बेफिक्र होके पकड़ ले मुझे, या हम उसको पकड़ लेते हैं, कहते हैं बस जिधर मैं जाता हूँ पीछे पीछे मुझे पकड़े आ, छोड़ना मत, चले आओ, चाहे जितना भी गहरा समुंदर हो, पानी हो, जितना भी इस जगह पे समुंदर का हिस्सा हो, तो ये आप मेरे बाजू पकड़ी रखेंगे तो आप उस पार हो जाएंगे, अगर छोड़ देंगे तो फिर साथ संग मझतार में ही रहे हैं।
पूरा सतगुर समझ लईए ता परमेश्वर तो घट नहीं,
कहते हैं कि पूरे सतगुरु को समझ ले, समझ आ जाए तो कहते हैं परमेश्वर से भी कम नहीं होता। परमेश्वर कहते हैं गुरु गोविंद दोनों कड़े किसके लागो पाए, बलिहारी गुरु अपने जित गोविंदिया मिलाए। कहते हैं कि मैं बलिहार जाऊँ कि जिसने मुझे गोविंद से मिलाया। साहब संगत सतगुरु की कृपा हुई तो हम कहते हैं कि आज हम निराकार को जानते हैं। तो साथ संगत सतगुरु ना बताते तो साथ संगत है तो साथ था, जैसे कहा कि नाल वंदा लै न सकंदा, स्वाह न जाने मूढ़ा, माया मद माता ओछी बाता, मिल जाई पर मदड़ा, कौ नानक गुरमिनी सूझे जब साजन सबसे निकट कड़ा। कहते हैं पर गुरु के बगैर सोच ही नहीं होती, जैसे कोई भी काम हो उस्ताद के बगैर एक इलम ही दे लो। तो साथ संगत हमें पता है किताबें बाजार बिकती है, हम लेकर उनको बैठ जाएं कि हम अपने आप कुछ बीए कर लेंगे, एमए कर लेंगे, पढ़ाई अपने आप कर लेंगे, कभी भी किसी ने आज दिन तक नहीं की। कोई भी नहीं कह सकता कि मैंने अपने आप पढ़ा, मैं स्कूल नहीं गया, मैं कॉलेज नहीं गया। इसी तरह साथ संगत बुजुर्ग, मैं आगे भी शायद बताई थी बात कि एक बुजुर्ग जी आए तो कहने लगे बैठे हैं, तो मैं ऐसे ही विचार में सत्संग का भोग पड़ा, उसके बाद हुआ कि मेरे जिधर मैं बैठी थी संगते बैठी हुई थी और भी, तो कहने लगे माता जी आपने कहा कि उसका उस्ताद के बगैर इलम नहीं हासिल हो सकता, पर हमारा तो पोता है वो तो पंजवीं क्लास की किताबें पढ़ रहा है। मैं क्या कोई स्कूल नहीं भेजा, कोई उस्ताद नहीं लगाया। मैं क्या ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है, फिर तो किताबें ले ही बच्चे के आगे रखी, वो अपने आप पढ़ जाएगा। कहते नहीं उसकी बड़ी बहन पढ़ाती थी। मैं क्या फिर उसकी उस्ताद तो वही होगी ना, आप कैसे कहते हैं कि उस्ताद के बगैर वो पंजवीं की किताब पढ़ना शुरू उसने क्लास की कर दी। तो आओ साथ से इतने इतने भलेके पढ़ जाते हैं इंसान को, तो पता ही नहीं चलता कि मैं कौन सी बात करनी है अभी कि कौन सी नहीं करनी। ये पता भी है उस्ताद के बगैर इल्म नहीं हासिल होता, फिर भी ऐसी बात कह जाता है कि नहीं उस्ताद के बगैर ही वो बच्चा पड़ गया। तो आओ साध संगत, ये इसीलिए कहते हैं कि जैसे कहते हैं कि गुरा बिना गत नहीं तो शाह बिना पत नहीं, घोड़ बिना ना ही सवार तो साधु बिना ही दरबार। कहते हैं कि घोड़ी पे कोई घोड़े पे ना बैठा हो तो कोई कह दे भाई वो नहीं, कहता मैं अस्पताल जा रहा हूँ, कहता नहीं तू तो पैदल चल रहा है, जब घोड़े के पे बैठा हो तो फिर कहता हाँ जी मैं सवार हूँ, मैं घोड़े पे बैठा हुआ हूँ। फिर उससे कभी कोई पूछ ले कि घोड़े के पाँव कितने होती हैं, टांगे कितनी होती हैं, तो साध संगत फिर नीचे कोई तो कह देता है एकदम चार, कोई जो एक कोई महात्मा के ऐसे था वो कहने लगा, घोड़े से उतर आया नीचे, उतर कर कहता एक दो तीन चार। वो कहता तू रोज़ घोड़े पे बैठता है तो तुझे पता नहीं उसके पाँव चार ही होते हैं, चार टांगे होती हैं। वो कहने लगा कोई पता नहीं मेरे मालिक का, चार के पाँच भी कर दे तो चार के तीन भी कर दे, इसलिए मैंने गिन लिया कि अभी कोई ऐसा तो नहीं खेल रच दिया मेरे ऊपर कि इसकी तीन टांगे कर दी या चार मुझे दिखाई देने लगी या पाँच देने लगी। तो आओ साध संगत, ये दातार कृपा करे तभी इन बातों की समझ आती है, नहीं तो इंसान चाहे कितनी भी बात करता रहे उससे साध संगत नहीं पता चलता।
सतगुरु आप है सुच्चा हीरा लाला दा बन जा रहा है,
कहते हैं कि सतगुरु आप सुच्चा हीरा होता है तो लालों का बन जा रहा होता है। तो साध संगत सुच्चा हीरा जो वहाँ लाल पड़े हों तो साध संगत लाल भी वो पहचान लेगा, तो क्योंकि सुच्चा हीरा जो है वो भी पहचान लेगा। जिसको पहचान होती है वो साध संग दोनों को पहचान लेता है। इसी तरह ये महात्मा संतों के पहचान है, ये सतगुरु की भी पहचान कर लेते हैं तो निराकार की है, तो साध संगत एक ही जैसे हैं, निराकार भी तो साकार भी। ये तो केवल भुलेखा डालने वाली बात होती है कि ये कह देते हैं कि कौन सा बड़ा है, तो साध संगत ये तो फिर आप जानते हैं कि बाप और बेटा खड़ा हो या भाई भाई खड़े हो, एक थोड़ा बड़ा हो छोटा हो तो पहचानने वाले तो पहचान जाते हैं, जो नहीं पहचानते कहते कभी किसको बड़ा कहेंगे कभी किसको। तो आओ साध संगत, संत भी महात्मा जब इसको जान लेते हैं तो कहते हैं सतगुरु जो है ये पूर्ण सुच्चा हीरा होता है, ये लाला का बन जा रहा होता है, लाल की परख करता है कि लाल कैसा होता है, आम इंसान को नहीं पता चलता। तो आओ साध संगत, इसी तरह ये ऐसे ऐसियाँ बातें जो ऐसी लिखी होती हैं पुरातन ग्रंथों में, जब इंसान पढ़ता है तो उसको समझ आती है कि वाकई ये बात जो है ये सही है या इसमें कुछ फ़र्क लगता है। तो इसी तरह कहा है कि ये आप ही सुच्चा हीरा होता है और लालों का बंजारा भी होता है।
अवतार गुरु है आप नारायण औगुण बख्शन हारा है,
कहते हैं कि आप ही नारायण होता है औगुण बख्शने वाला होता है। इसमें साध संगत ये नहीं कि ये गुण जो है गुण जो है इसको पता होता है कि ये गुण है, ये इसमें गुण है, तो ये इसमें जो गुण है उनको इसी तरह कह के लाला दा बंजारा है, अच्छे गुणों का ये बंजारा होता है, जिसमें गुण होते हैं अच्छे होते हैं उसको साध संगत जब कोई देख लेता है तो कहता है कि वाकई कोई इंसान भी बड़ी अच्छी बातें करता है, कहता तू तो बड़ा लाला का बंजारा लगता है, तुझे तो सब समझ है कि ये बात अच्छी है और ये नहीं है, ये सच है ये झूठ है। अजय साध संग इतनी इंसान पहचान नहीं कर सकता सच झूठ की, ये तो आप ही दाता बताए तो तभी पता चलता है। पर फिर भी साध संगत संत जो होते हैं ये थोड़ी पहचान कर ही लेते हैं, जैसे जोरी होते हैं उनको पहचान हो जाती है, हीरे मोती की भी सब गोल्ड सोने की भी सब पहचान हो जाती है, गोल्ड भी पहचान लेता है, पीतल भी पहचान लेता है और सत्संग सब इसको पहचान हो जाती है। पर जब सत्संग जोरी के पास बैठता है तो, सराफ के पास बैठता है तो, एक दफ़ा एक किसी बात सुनाई किसी ने कि एक लड़का था वो सत्संग इसी तरह, एक कोई उसको बड़ा चमकता पत्थर मिला, उसने समझा कि ये डायमंड है, इसको काटेंगे बड़े बीच से डायमंड बन जाएंगे, इनको बेचेंगे फिर गरीबी दूर हो जाएगी। तो उसने सात संगत वो जाकर तिजोरी के पास सराफ के पास ले गया कि ये देखो मेरे पास मुझे हीरा मिला है कितना बड़ा, इसके टुकड़े करें तो कितने बन जाएंगे। तो उसने कहा बेटा ये बड़ा कीमती है, इसको तू संभाल के अभी रख ले अलमारी में, फिर मैं तुझे बताऊंगा, फिर जब बड़ा हो जाएगा ना तू मेरे पास लेके आना। तो सात संग जब बड़ा हुआ तो उसने जो देखा वो कहने लगे भाई मेरे पास तू काम करता रह, तुझे पहचान हो जाएगी। उजोरी के पास सराफ के पास काम करता रहा तो जब सात संगत कहने लगे ऊन ले आ तू, जब उसको परख हो गई भाई ये कांच है या हीरा है या गोल्ड है या पीतल है कुछ भी है, तो सात संगत उसने जैसे ही देखा अलमारी से निकाला तो उसको फेंक दिया, फेंक दिया तो गया शराब के पास, कहते ले आया, कहता नहीं मैं तो फेंक आया, क्यों, कहते हो तो ऐ कांच था, कहते हाँ बेटा उन तुझे पहचान आई, तू आप ही कांच कह के उसको फेंका, जे मैं कहता उस वक़्त तो तू मुझे कहता पता नहीं इसको लालच आ गया, मुझे कह दिया कांच है फेंकेगा तो मैं उठा लूँगा। तो आओ सात संग इतने इतने पलेखे जब इंसान को पड़ जाते हैं तो फिर सात संगत ये कहता है कि वाकई मैं तो पलेखे में रहा हूँ। तो आओ सात संगत ये ऐसी बातें भी, ऐसी कभी कभी ऐसी बातें भी शहनशाह अपने विचारों में सुनाया करते थे, तो फिर ही सात संग समझ आती थी, नहीं तो कहाँ समझ आती थी, कोई भी बात करता था उस पर यकीन आ जाता था। तो जब सात संगत समझ आई तो जो भी कोई बात करे आप कहते हैं नहीं ये बात ठीक नहीं कर रहा, अंदाज़ा लगना शुरू हो जाता है कि ये बात जो है ये ऐसे ठीक नहीं कर रहा है, इसको बात ऐसे करनी चाहिए। तो आप सात संगत दातार कृपा करें तो जो समझ मिली है इसी तरह ये समझ मिली रहे, ताकि हमें खड़े खोटे की पहचान इतनी तो फिर भी नहीं आ सकती जितनी सतगुरु को होती है। हम तो सात संगत हम चाहे कितना भी कहें कि हमें पहचान आ गई, हमने देख लिया, हमने परख लिया, इंसान को ही ले लो, हम किसी किसी के ऊपर इतना विश्वास कर बैठते हैं कि वाकई इसके ऊपर और खरा बंदा ही नहीं है, ये बिल्कुल ठीक बोलता है। तो जब सात संग कोई बात आ जाती सामने हम कहते हो ये देखने में और ये सुनने में और आया, जैसे सात संग हम देखते हैं कोई कहता है कि किसी ने कहा कि खरबूजे की कितनी पहाड़ियाँ होती हैं, ऊपर से गिरकर हम बता देते हैं एक दो तीन चार, जब अंदर से काटते हैं तो एक ही होता है, उसकी फिर आप बनाते हैं चाहे छोटी पहाड़ी बना लें चाहे बड़ी बना लें। तो इसी तरह ही सात संगत जब ये ज्ञान मिलता है तभी समझ आती है, नहीं तो ये तो पता और हर किसी से सुना होता है कि परमात्मा कहाँ है हर जगह मौजूद है, भगवान कहाँ है पते पते में है डाली डाली में है, भगवान कहाँ है सबके बीच में है, ये तो हर कोई बच्चा भी कह देगा। पर सात संगत बिल्कुल पूर्ण जैसे हम कहें कि हमें ये समझ आई, ये सतगुरु के बगैर नहीं समझ आ सकते, अपनी करनी से नरक न पाओ तोर, कहते हैं कि अपनी करनी से अपने कर्मों से नरकों में भी शायद जगह मिले ना मिले, ये तो सतगुरु की कृपा होती है। तो सात संगत से समझ आती है, पर हमने तो उल्टा ही समझ लिया, कहते हैं कि समझ मिली समझावन ली, समझ मिली समझन ली पर लग पई समझावन, कहते हैं कि समझ तो मिली थी समझने के लिए गुण इकट्ठे करने के लिए, पर हम औरों को उपदेश देना शुरू कर दिया। पर साथ संगत आओ यही अरदास करें कि दातार कृपा करना कि हमें भी इसी तरह जैसे समय दी है सबको देना और इसी तरह साथ संगत के रूप में बैठकर और सब साथ संगत ये आनंद आनंद अपने वातावरण ऐसा रखे कि जो साथ संग जिसमें जो भी देखे गए कमाल का ये वातावरण है जिसमें ये बैठते हैं उठते हैं सत्संग का रूप दे देते हैं तो साथ संगत वही सबसे उत्तम चीज़ होती है जो हमारी समझ में आ जाती है।
अवतार गुरु है आप नारायण ओगन बख्शन हारा है।
कहते हैं कि आप नारायण होता है ओगन बख्श देता है क्योंकि आम इंसान तो नहीं बख्शता। हमारे साथ कोई बात करे ऐसी या कोई और किसी के साथ करे जितने में बैठे हुए हैं हम कहते हैं बच्चों तेरे से बदला लेंगे तुझे हम नहीं छोड़ेंगे। पर सतगुरु देखकर एडिट कर देता है और साथ संगत ये बिल्कुल ही जैसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं सुना ही नहीं ऐसे साथ संगत ये अपने आप को ऐसे एक अलग सा रखते हैं ये सतगुरु का ही विरोध होता है और इंसान के बस की बात नहीं होती। वो तो एक की चार सुनाए नहीं तो उसको खाना भी अजब नहीं होता। पर साथ संगत सतगुरु वो साथ संगत सामने भी खड़ा होकर को गलत बचन कह देता है बोल कह देता है फिर भी जो पास खड़े होते हैं उनको थोड़ा गुस्सा आ जाता है कहते हैं फिर भी नहीं छोड़ो ठीक है वो अपनी जगह ठीक है हम अपनी जगह ठीक है। तो साथ संगत से गुरु और इंसान में इतना फर्क अंतर होता है इतना फर्क होता है जिसमें साथ संगत वो देख कर एडिट कर देता है हम देख कर बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं इतना फर्क होता है। तो साथ संगत यही दातार कृपा करे कि हमें ऐसी समझ दी रखे ताकि हम भी सतगुरु के पीछे पीछे चल कर अपने जीवन को सवारे रखें। साथ संगत ये दर्द